होम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन अस्मि श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मयि ददाति सपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकम श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों की जय हो। और आज के इस क्लास में आने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले लगभग एक महीने हम दो ही बार मिल पाए, बीच में दो गैप रहे। मायापुर में हमारी एक विशेष पहली बार एक इस्कॉन लीडरशिप संघ करके एक एसोसिएशन का एक वो रखा गया, जिसमें पूरे वर्ल्ड से जो हैं टेंपल प्रेसिडेंट्स पहुँचे थे। जैसे पहले ये मीटिंग होती थी आईसीसी के नाम से, जिसमें इंडिया के ही प्रेसिडेंट इकट्ठे होते थे एक जगह पर। बट ये एक विशेष तरह का था, जिसमें कि आने वाले दिनों में एक विशेष जो है प्लान्स जो भी रहते हैं जीबीसी के, आने वाले समय पर किस प्रकार उनको एग्जीक्यूट करें और क्या हमारी योजनाएं हैं इसको उनको और अच्छा ढंग से चलाने के लिए, क्या रूल्स रखें, क्या रेगुलेशन रखें। तो वहाँ पर काफ़ी सारे सेमिनार भी थे। तो लगभग 8 दिन का ये रहा प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी अच्छी जो है एक ही साथ 20-20, 25-25 महाराज लोगों को देखने का मौका मिला। काफ़ी भक्त लोग पहुँचे पूरी दुनिया से, तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर। और एक अच्छी शुरुआत है, ये पहली बार इस तरह का एक प्रोग्राम रखा जो हर 2 साल में एक बार होगा। और जो हमारे प्रभुपाद जी ने, जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, तो वो भी चाहते थे कि उनके 64 मठों को चलाने के लिए जो है एक जीबीसी बने। ये कहाँ पे बज रहा है? तो इस प्रकार वो चाहते थे कि एक जीबीसी चले जो कि सारे के मठों को मेंटेन करे बाद में। तो लेकिन क्या हुआ, उनके जाने के बाद सब लोग आपस में लड़े झगड़े और सब ने मठ अपने अपने नाम पे ले लिए। लेकिन जब प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी ने अपने जीते जी जीबीसी बना डाली। और वो लोग जो हैं प्रभुपाद जी उसके एक सदस्य बने और काम करा आपस में शुरू में मिलकर, तो काफ़ी अच्छा रहा उससे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद लोग जो हैं थोड़ा मूवमेंट को शेकिंग फील हुआ प्रभुपाद जी के जाने के बाद। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ सन्यासी इधर उधर चले गए, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की योजना कुछ और थी, क्योंकि इसी मूवमेंट के थ्रू भगवान ने प्रचार करना था पूरे संसार भर में, तो फिर भी ये जो है चलता रहा। और कई महाराज लोगों ने जो है अपना पूरा जीवन समर्पित किया पूरी तरह से प्रभुपाद जी की वाणी पर और उन्हीं नियमों को पालन करने का प्रयास किया जो प्रभुपाद जी ने बोला था, तो उन नियमों को पालन करना और कराना इनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी। तो करते करते लगभग प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी आज इस्कॉन एक बहुत अच्छी संस्था के रूप में पूरे संसार भर में उभर गया है। और जिस तरह का क्राइसिस प्रभुपाद जी के जाने के बाद था, अब उस तरह का क्राइसिस नहीं है। और दिन ब दिन जो है इस मोमेंट में बढ़ोतरी होती जा रही है हर तरह से। तो अपने आप में ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को भी जो है सत्य करता है और प्रभुपाद जी के मूड को भी जो है दर्शाता है। और ये जो मीटिंग थी इसमें भी यही था कि जैसे जो सन्यासीगण हैं, जो बीसीज हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं इस मूवमेंट को अच्छा करने का, लेकिन इतनी सारी जिम्मेवारी हैं, डिसाइपल्स की भी जिम्मेवारी है क्योंकि कुछ लोग इनिशिएटिव गुरु भी हैं, तो उनकी कई जिम्मेवारी हैं, तो उसके बावजूद भी इस मूवमेंट को चला रहे हैं। और तो इस मीटिंग का मतलब ये था कि आने वाले दिनों में कुछ और लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे और जो प्लानिंग्स की जाती हैं उनको ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाए, तो उससे काफ़ी लोग जो हैं मूवमेंट को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। और ताकि अभी से कुछ लीडर्स देखने लगे और इस सब चीज़ संभालने, बड़ा अच्छा एक प्रयास था। तो काफ़ी अच्छी रियलाइजेशन रही कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी और चैतन्य चरितामृत में भी जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बोला कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की शाखाएं जो हैं आगे बढ़ेंगी और पूरे विश्व भर में प्रचार करेंगी, तो यही इस्कॉन के माध्यम से चल रहा है पूरे संसार भर। तो जिस प्रकार बताया गया था शुरू में भी कि ये मूवमेंट कोई साधारण मूवमेंट नहीं है और इस मूवमेंट में, इस संस्था में, ये सागर के समान है। जिस प्रकार सागर में बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ खारा पानी चख कर अंदर नहीं जाता, किसी को खाली झाग दिखता है, कोई उसमें मोती उठाता है, कोई मछलियां निकालने जाता है और कोई उसी सागर में गहरा घुसकर हीरे मोती भी जो है निकाल लेता है, लेकिन इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर जनरेशन या जनसंख्या उन लोगों की है जो पानी को खारा समझकर अंदर एंटर नहीं करते। फिर कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो लोग केवल मोती वगैरह इकट्ठा करेंगे ऊपर से या मछलियाँ इकट्ठी करेंगे जीवन यापन के लिए, सागर का इस्तेमाल इसलिए करेंगे। और कुछ लोग, बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो उस सागर की गहराइयों में जाकर असली धन निकालेंगे। तो ये हम सबको देखना है कि हमें क्या चाहिए। हम लोग इस समुद्र से हमें हमारी क्या क्या पूर्ति हो, उसी प्रकार इतनी बड़ी संस्था का मतलब चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरे विश्व भर में फैली, उन्हीं की कृपा से मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। तो ये मूवमेंट जो हमें दे रहा है एक ऐसा वातावरण जहाँ पर हम लोग आकर ज्ञान ले सकें, भक्तों का संग प्राप्त कर सकें, भगवान का दर्शन कर सकें, विभिन्न प्रकार की सेवाओं में अपने को जोड़ सकें और इस प्रकार अपने को शुद्ध कर, अपनी चेतना को शुद्ध कर, उस चेतना को जो कि जन्मों जन्मों से बार बार जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और उसके अलावा हर जन्म में नाना प्रकार की आसक्तियों के कारण, काम वासनाओं के कारण जो यहाँ जकड़ी हुई है, उस चेतना को शुद्ध कर भगवान के धाम पे जाना। कोई मेरे से पूछ रहा था कि प्रभु जी आज क्या टॉपिक लोगे, तो मैंने उसे यही बोला कि टॉपिक्स तो हम लोग कुछ समय के बाद शुरू करेंगे सीरीज। इस हम अपनी कंडीशनिंग को पहले समझ जाएं, अपना मर्ज हमें मालूम पड़ जाए और कुछ रियलिटीज पता चल जाएं, तो उसके बाद हर चीज को समझना सोचना आसान हो जाता है। जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे लिए क्लियर नहीं होगा और उद्देश्य क्लियर ना होने की वजह से हमारे जो भी एफर्ट्स होंगे वो हमेशा कंटैमिनेटेड रहेंगे या दिग्भ्रमित रहेंगे, अर्थात उद्देश्य से भ्रमित रहेंगे। जब व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है, तब तक उसके सारे प्रयास किसी भी चीज के लिए या तो मन के धरातल पर उसके मन को आनंद अर्थात मनोरंजन देने वाले होंगे या उसके जो अनर्थ हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कि मेरी पूजा हो, मुझे लाभ पहुंचना चाहिए इस सेवा के बदले में, और ये सब करने से मेरे को कोई पद मिले और मुझे कोई प्रतिष्ठा मिले, तो इस प्रकार के अगर अनर्थास भी दिमाग में चल रहे हैं, और इसके अलावा बहुत से ग्रॉस अनर्थास, तो वो सब हमारे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। और जब तक हम उस उद्देश्य के प्रति गंभीर नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार एग्जांपल दिया कि अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट के प्रति गंभीर नहीं है तो बिजनेस नहीं चला रहा, फिर तो लॉस हो जाएगा। तो हर व्यक्ति का जो उद्देश्य बनता है जीवन का, इस मटेरियल लाइफ में हम देखते हैं, बच्चा बोलता है बचपन से कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके सारे के सारे एफर्ट्स डॉक्टर बनने के लिए होते हैं। टेंथ क्लास को अच्छे मार्क्स से पास करने के बाद वो आर्ट्स साइड में नहीं जाता, क्योंकि उद्देश्य क्या है, डॉक्टर बनना, तो उसको नॉन मेडिकल में जाना पड़ेगा या साइंस लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन का उद्देश्य क्लियर है, ये शब्द मैं इसलिए बार बार प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि जीवन का उद्देश्य फिलोसॉफिकली समझना, अर्थात शाब्दिक रूप में, ज्ञान के रूप में समझना, दूसरा इसको समझकर उस पर कार्य शुरू करना, जिसे बोलते हैं संबंध ज्ञान, संबंध अभिदेह प्रयोजन। इन तीनों की हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक विशेष महत्व है। जो तीन डीटीज की भी हम बात करते हैं, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, तो जो राधा मदन मोहन के डीटीज हैं, विग्रह हैं, इनको बोला जाता है ये संबंध के। फिर राधा गोविंद देव जी अभिदेह के हैं और राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन के हैं। संबंध, अभिदेह और प्रयोजन का मतलब क्या है? संबंध का मतलब कि आत्मा और कृष्ण का, जीव का और कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, उसको समझने का प्रयास करना, तो ये संबंध ज्ञान कहलाता है। कि हम क्या हैं, हमारी क्वालिटी क्या है, भगवान क्या है, भगवान की क्या क्वालिटीज हैं, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, ये सब क्या है, पूरा संबंध को जो है जानने का प्रयास करते हैं। जो संबंध उसको मालूम पड़ जाता है तो अभिदेह अर्थात उस उद्देश्य को प्राप्त कैसे करें, उस कृष्ण को प्राप्त कैसे करें। तो कृष्ण को प्राप्त करना, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की जाकर सेवा करना, ये प्रयोजन है। जानना, जानने के बाद प्रयास करना अभिदेह, और प्राप्त कर लेना प्रयोजन। तो ये तीन जो हैं हमारा जीवन के अंतिम लक्ष्य है। राधा मदन मोहन जो है संबंध ज्ञान के विग्रह हैं, राधा गोविंद देव जी अभिदेह के, और राधा गोपीनाथ जी प्रयोजन कि हमें क्या चाहिए। तो जब तक हम लोगों का संबंध ज्ञान क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग, जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहे हैं, कि अगर उद्देश्य क्लियर नहीं है तो हमारे सारे एफर्ट क्या है, यूजलेस है, सारी एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं। और एनर्जी वेस्ट करने का मतलब क्या है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जटनी जठरे शयनम, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में कपिल देव जी मुनि जी अपनी माता देहूति को, एक शिशु के माता के गर्भ में रहने की अवस्था को एक्सप्लेन करते हैं। और ये इतनी दयनीय स्थिति है वहां पर एक शिशु के लिए कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुनकर, लेकिन हमें कभी याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये एक भगवान की कृपा है कि हमें कई बार कष्ट याद नहीं आते, अपनी पिछली की गलतियां याद नहीं आती, पूर्व जन्म याद नहीं आता, कई बार आपने देखा कुछ लोगों को घरों में होता जाकर, हमारी माताएं, हमारी बहनें, या हमारी वाइफ, या हमारे हस्बैंड, जिनको कोई रिश्तेदार कहीं उनके साथ बदसलूकी कर दे, कुछ अपशब्द बोल दे, तो वो उस शब्द पूरा जीवन उसको जीने नहीं देते। सुना आपने, देखा कितने लोगों ने एहसास महसूस भी किया ऐसा कि जब किसी के मुख से शब्द निकलते हैं, ननंद के, जेठानी के, सास माँ के, या भाई ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, है ना, पिता ने कुछ गलत शब्द बोल दिए, पुत्र ने गलत शब्द बोल दिए, घूमते रहते हैं, वो हॉन्टिंग करते रहते, बार बार माइंड में स्ट्राइक करते रहते, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने इसके लिए इतना किया, तो वो इस प्रकार डिप्रेशन में चला जाता है। कारण बन जाता है, कई बार लोग पागल हो जाते हैं और उसकी शक्ल नहीं देखना पसंद करते, उससे बदला लेना चाहते हैं, तो इतने ज्यादा बुरी अवस्था में चला जाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसी स्थिति व्यक्ति की हो जाती है, और जो बच्चा जैसे बता रहे हैं उसकी माता के गर्भ में, वो इतना ज्यादा भूल जाते हैं इन सब चीजों को। माता के गर्भ में उसकी बताइए किस प्रकार उसके अंदर चेतना आती है, कब उसकी स्थिति बढ़ती है, किस प्रकार उसको एक ही स्थिति में रहना पड़ता है। उस बच्चे को मल भी वहीं त्याग रहा है, मूत्र भी वहीं त्याग रहा है, और नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के जर्म्स और बैक्टीरिया से उसको काट रहे हैं, अंदर घाव हो रहे हैं उसके अंदर। और वहां पर उसको जब माता के द्वारा कुछ भी खट्टी चीजें या मिर्च वाली चीजें खाई जाती है, तो उसको इतना कष्ट होता है वहां पर कि पूछो। और कई बारी कुछ विशेष जीवात्माओं को पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं, और उस अवस्था में वो बच्चा कांप जाता डर के मारे कि अब मैं एक और लाइफ लेने जा रहा हूं, ये 100 मैंने देख ली, क्या क्या था मैं। प्रार्थनाएं करता है, हृदय नीचे बैठ के प्रार्थनाएं करता है माता के गर्भ में। कथा कहानियां नहीं है ये, हम सारे साथ सबके साथ हुआ है। हम सबने प्रभुपाद जी प्रपट में लिख रहे हैं कि हर माता चाहती है कि इतने कष्टों के साथ उसको एक बच्चे को उत्पन्न करना पड़ता है, और वो कसम खाती है कि इतने दर्द, इतने कष्ट, अब मैं दोबारा मां नहीं बनूंगी। लेकिन बताते हैं कि स्थिति इतनी खतरनाक होती है, और मन हमारा जो है दूषित मन, ये इतना ज्यादा क्या कहते हैं उसको, हमलावरों पर कवरिंग कर लेता है कि भोग विलास के अलावा कुछ दोबारा, जब कुछ कष्ट खत्म होते हैं तो व्यक्ति फिर सोचता है इन सब चीजों में। तो ये शिशु इतना कष्ट पाता है, इतनी प्रार्थनाएं करता है, और तब जाकर इतने कष्टों के साथ बाहर आता है। प्रार्थना करता है कि मैं बस भजन करूंगा, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी भी एक भजन में बोल रहे हैं इसी बात को, जीव जागो गोर चांदर बोल। फिर कह रहे हैं अगली लाइन में, भजीबो बलिया ऐसे संसार भीतर, इस संसार के भीतर में आया ये बोलकर कि मैं आपका भजन करूंगा भगवान। भूली या रहिले तुमी अविद्या धरे, लेकिन फिर तुम भूल गए। और जीवात्मा को भुलाने में कौन कौन मदद करता है, एक वो खुद स्वयं अपनी मदद करता है, दूसरा उसके सोकल्ड माता पिता वो भी मदद करते हैं। उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, एक टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए आप हमारे इस परिवार में आए हो। इसलिए वैष्णव समुदाय में विवाह का, हिंदू धर्म में विवाह एक संस्कार माना जाता है, गर्भधारण भी संस्कार होता है एक, और उस संस्कार के द्वारा एक जीवात्मा को माता के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि मैं एक जीवात्मा को इस ब्रह्मांड से बाहर निकाल सकूं, भगवान के धाम वापिस भेज सकूं, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार जब इन संस्कारों को किया जाता है, और इसलिए हमारे यहां पर इतने 13-16 के संस्कार बताए गए, उन संस्कारों को करते करते, इन रिचुअल्स को पूरा करते हुए, उसकी चेतना को उन रिचुअल्स के द्वारा पूजा भक्ति करने के बाद, उसके उन रिचुअल्स के द्वारा उसकी चेतना का एडवांसमेंट, अपलिफ्टमेंट किया जाता है। एक बार बता रहे थे राधा गोविंद महाराज की, एक बार जब औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। अकबर के कौन थे? शाहजहां थे। तो औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया था, तो कभी कभार मिलने भी आता था, अंदर देखने आता था कि कैसे तड़प रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोल दो। कहते मेरी तुम पूरी कर सको तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मेरी ख्वाहिश केवल ये है, मुझे मानो तुम तो पूरी नहीं करोगे, लेकिन मैं भगवान से अल्लाह से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरा अगला जन्म हिंदू परिवार में हो। क्यों हो? क्योंकि हमने देखा है कि हिंदू परिवारों में जब पिता इत्यादि का देहांत होता है तो उनके बच्चे उनके मरने के बाद भी श्राद्ध इत्यादि के द्वारा उनका तर्पण करते हैं, उनको जल देते हैं, खाने के लिए देते हैं मरने के बाद भी। कहते लेकिन तूने तो मुझे जीते जी जल देना बंद कर दिया, सब कुछ करना पड़ गया, तो मैं नहीं चाहूंगा दोबारा देना चाहिए। तो इस प्रकार इन संस्कारों का मतलब है कि व्यक्ति की चेतना को शुद्ध किया जाए। पुत्र नाम के पुत्र का मतलब यह है कि जो पूत नामक नरक से परिवार वालों को उद्धार कर दे। लेकिन संतानें जो उत्पन्न होती हैं उनका उद्देश्य भी हम जानते हैं, तो इसलिए समाज के अंदर वैष्णवों की जरूरत है, उस तरह की चेतना वाले लोगों की जरूरत है जो इस प्रकार के संस्कारित, इस प्रकार की जो है कृष्ण कॉन्शियस में है ना चेतना वाले बच्चों को उत्पन्न करें, ताकि समाज में कुछ चेंज आ सके। अभी हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है छोटी छोटी बातें समझाने के लिए। हमने भक्ति शुरू करी 20, 25, 30, 35, 40 साल के बाद, तो कई बारी तो अगर भगवान की कृपा है, पूर्व जन्म के कर्म है तो कुछ पायस कर्म है, तो उसकी वजह से हमारी चेतना में आ जाती हैं चीज़ें, फिट हो जाती हैं। लेकिन जितने लोगों ने जितने ज़्यादा देर में किया है उनको समझने में मुश्किल आती है। लेकिन आप देखो, अगर आप मायापुर गुरुकुल देखा हो, अपने गए थे ना, तो वहाँ पर जिनको समझ आ गया है तो उन्होंने अपने संतानों को गुरुकुल में एडमिट करा दिया। तो वहां पर बचपन से ही एक ऐसा वातावरण मिलता है उसको। उद्देश्य क्या है कि हम अपनी संतान को भगवद्धाम वापस भेजें, उद्देश्य ये है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो, ये फालतू की चीज है ना, इनसिक्योरिटी रहती है ना, क्योंकि हमें तो विश्वास ही नहीं भगवान पे, पालन कौन करेगा। उन लोगों ने अपना पूरा सेटअप करके इस तरह रखा था कि वो संतान जो है असली उद्देश्य पूरा करे, और बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं। बचपन से एक ऐसे वातावरण में जीवित हुए, जीवन लिया उन्होंने कि जहाँ पर केवल कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, इसी जगन्नाथ देव सुभद्रा मानव की जय। तो इस प्रकार कहने का मतलब है कि सब चीज़ों का उद्देश्य होता है। और फिर वो पुनरपि जन्म जब बात कर रहे हैं कि फिर से कष्ट, और फिर बाहर निकलने के बाद अलग से कष्ट। तो अभी हम लोग जब आईएलएस मीटिंग में थे वहां पर, तो एक विदेशी माता जी थी, प्रोपर डिसाइपल थी, तो वो यही बोल रही थी कि जिस कल्चर को भारत ने फैलाना था, तो भारतीय लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छी अच्छी हाई डिग्रीज दिलवाकर एक वो बड़ा थोड़ा थोड़ा उसी से खुश हो जाते हैं कि कभी कभी मंदिर में हाथ जोड़ देता है, ये थोड़ा सा कर, ये कर लेता है, बाकी उनको लगता नहीं कि इन बच्चों को भक्त बनना चाहिए। बहुत अब बहुत कटु शब्द है, हृदय पर चुभते हैं ये बातें, क्योंकि हमारी तो आसपास के वातावरण को देख के हमारी भी ट्रेनिंग वैसी हुई है नहीं, तो हम लोग भी बह गए उसमें कि भाई ठीक है, सबकी पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने चाहिए, बिल्कुल बात है, और पढ़ाई की जरूरत है, लेकिन किस तरह की पढ़ाई की ज्यादा जरूरत थी। तो कई बार जब इस प्रकार के वातावरण में जब असली बात को, सत्य को रखा जाता है तो डाइजेस्ट नहीं होता, मुश्किल लगता है डाइजेस्ट करना, और फिर लगता है तो हमारे लिए है ही नहीं, भक्ति हमारे लिए नहीं है ये, तो ठीक है अब जो कर रहे हैं जैसे कर रहे ठीक है, क्या कर सकते। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बड़े अच्छे शब्द कहे, और लगा कि मतलब खतरनाक टोंट मारा उन्होंने कि हम बस इसी में खुश हो जाते हैं, तो उन्होंने इस बात को इसलिए रखा क्योंकि आप उस गुरुकुल में देखें तो वहाँ पर विदेशियों के बच्चे हैं सारे, भारतीय के बच्चे नहीं हैं। तो इसका एक कारण ये भी होता है कि एक तो सही मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुआ या हो रहा, सही वातावरण प्राप्त नहीं हो रहा और हम अज्ञान में हैं, इसका कारण ये होता है। नहीं तो सही वातावरण हो, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो और ज्ञान को ठीक ढंग से अनुशीलन करें तो जैसे उदाहरण के लिए पूरा रोहिणी में सब लोग इस समय बढ़िया इंद्र तृप्ति टीवी में लगे हुए हैं, ठीक है ना, टीवी देखने में, इंद्र तृप्ति करने में, बच्चे डिस्को जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुद सब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, बढ़ता जा रहा है इस तरह का कल्चर। लेकिन उन्हीं में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो 16 माला का जप कर रहे हैं, दीक्षा ले चुके हैं, प्रयास कर। तो दीक्षा ले लेना, नाम बदल जाना, ये उनके हिसाब से देखें तो बहुत बड़ी चीज है जो लोग कुछ नहीं कर रहे। लेकिन भक्ति, दीक्षा का मतलब है इनिशिएशन, अर्थात शुरुआत है, ये शुरुआत है व्यक्ति की भक्ति के मार्ग में संबंध, अविधेय और प्रयोजन तक जाने की। इसलिए जब हम लोग बहुत देर में भक्ति में आते हैं तो हमारी स्पीड उतनी तेज हो जानी चाहिए। हमारे साथ होता क्या है कि हम जितना लेट आए तो उतने ही अनर्थों के साथ आए। भौतिक समाज में हमारे पूरी की पूरी जो चेतना थी उसी चेतना के साथ आध्यात्मिक जगत में एंटर करते हैं और उस चेतना से एंटर करने के बाद कुछ समय, कुछ साल तो उन्हीं चीजों के साथ ही निकल जाते हैं हमारे। सही क्या है, गलत क्या है, उसने ये बोला, उसने ये क्यों बोल दिया, वो उसकी तरफ है, मैं उसकी तरफ हूं, समझे। इन सब का भक्ति से कोई लेना देना नहीं, तो काफी नुकसान हो जाता है इसमें हमारा समय। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनको मालूम है कि भक्ति कैसे होती है, किस में ज्यादा फायदा है, किस तरह वैष्णवों का संग मुझे भक्ति में आगे बढ़ा सकता है और वैष्णवों का ही संग, वैष्णव शब्द में इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भक्ति है सब लोग चाहे एक बार नाम लेते हैं, चाहे रेगुलर लेते हैं, चाहे शुद्ध नाम लेते हैं। तो जो लोग ठीक ढंग से नहीं पहचान पाते वैष्णव को, वैष्णव के कि वैष्णव कौन है, तो और संग करते हैं तो उस संग में फिर भक्ति में आगे बढ़ने की जगह नुकसान भी बहुत होता है। और मैं काफी, क्योंकि हम लोग मंदिर में रहते हैं तो हमें काफी चीजें पता चलती है, कई बार सुन लेते हैं कहीं ना कहीं से कि प्रभु जी आजकल ये चल रहा है, लोगों ने ये बोल दिया, लोग तो आपके बारे में ये बात करते हैं, ये करते हैं। तो इतना हृदय में दुख होता है कि एक तो भक्ति लता बीज प्राप्त करना इतना मुश्किल था, कई कई जन्मों में बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है और फिर ना सही ढंग से संग करने के कारण हम लोग जो हैं उसको खो देते हैं। हमको मालूम है, हम प्रयास करते हैं जैसे कि कितना कठिन है वास्तव में जब निरपराध होने का प्रयास करते हैं, अनर्थ निवृत्ति का प्रयास करते हैं, भजन क्रिया करने का प्रयास करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी कितनी बाधाएं आती हैं और कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उस अच्छी चेतना तक पहुंचने के लिए। जब ऐसे भक्ति बात कर जो मंदिर में रहते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो लगभग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे एग्जॉस्ट है सेवा में। फिर कभी हम सोचते हैं कि भाई जो वो भक्त जो अपना काम धंधा भी चला रहे हैं, घर भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है, वाइफ को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, और उसके बाद जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कई बार हमारी मंदिर में बात होती है कि ऐसे गृहस्थ वर्शिपेबल है, पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि इतनी सारी लाइबिलिटीज के होते हुए, जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के होते हुए भी वो अपनी 16 माला 4 नियम, भक्तों का संग, अध्ययन करना रोज, अगर ऐसा फॉलो कर पा रहे हैं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को, दे आर वर्शिपेबल, उनकी तो पूजा करनी चाहिए। लेकिन जब कभी थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है कि कुछ उन्हीं में ऐसे भी भक्त हैं जिनको अभी आनंद आता है केवल प्रजल्पा में। प्रजल्पा का मतलब वो बातें, वो चर्चाएं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। तो ऐसे लोग जो, या दूसरे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं साथ ढूंढते हैं अपनी मेंटालिटी के लोगों का, अपनी जैसी मेंटालिटी के लोगों का, और कुछ ना कुछ उसमें सिस्टम में, अथॉरिटी में, गुरु में, वैष्णवों में कमियां देख देख कर उस पर चर्चा। तो या फिर अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो या फिर कुछ जैसे कुछ भी करने को नहीं है, तो अगर किसी की किसी से बनती नहीं तो कुछ एक झूठ निकालते हैं, कुछ तो होना चाहिए मटेरियल में बात करने के लिए, तो कुछ झूठ बोला, वो झूठ आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार कितना समय उनका इसमें लग जाता है, और समय लगने के बाद कितना ज़्यादा हरास नुकसान होता है उनकी चेतना का या उनकी भक्ति का, पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें जब पता चलती है तो सच में दुख होता है कि एक तो इतनी मुश्किल से भक्ति लेता बीज व्यक्ति को प्राप्त होता है, और उसमें भी ठीक ढंग से एडवांसमेंट करने की जगह व्यक्ति जब असत्संग में पड़ जाता है तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए जो बताया जाता है तीन प्रकार के नाम, नाम प्रार्थ में जप करते हैं हम लोग, नाम अभास में जप करते हैं, और शुद्ध नाम में जप करते हैं। तो हमारा जीवन किस में निकल जाता है? नाम अपराध के जप में। और नाम अपराध के जप से नुकसान क्या होता है कि इसकी पनिशमेंट केवल कृष्ण देते हैं, और पापों की तो यमराज जी देते हैं, लेकिन जो लोग माला भगवान के नामों का जप कर रहे हैं उनका कोई लेना देना नहीं है यमराज से, उनका सीधा डायरेक्ट भगवान से लेना देना। और भगवान जैसे भी कहीं अभी कहीं बात कर रहे थे कि सुदामा ने बस थोड़े चने लिए थे भगवान के, लेकिन उनको काफी लंबे समय तक दरिद्रता का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि सुदामा जी की चेतना में कोई फर्क पड़ा, उनका पूरा प्रेम था कृष्ण से, पूरी रिस्पेक्ट थी कृष्ण से, फिर भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। उसी तरह हमारे द्वारा होने वाले एक एक पाप, एक एक अपराध का, किसी की निंदा का, या इन सब का क्या होता है, लेखा जोखा रखा जाता है। और इनकी वजह से जो कष्ट आते हैं, जो मानसिक तनाव आता है, या जो नुकसान होते हैं मानसिक और शारीरिक, इस जीवन में भी आएंगी और अगले जीवन में भी आएंगी। तो भक्तों को बहुत ज्यादा सजग रहना चाहिए, अपने जीवन के संबंध ज्ञान, अविद्या और प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए उसको सीरियस होना ही पड़ेगा। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम लोग पहले दिन से या दीक्षा लेने के बाद के दिन से एकदम शुद्ध भक्ति के धरातल पर कार्य करने लग जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी कुछ आदतें भी तो हैं, 20, 25, 30, 35 साल में कुछ अलग प्रकार की आदतें जो हमने डाल ली। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सच में सीरियस है तो वो बहुत जल्दी और भगवान से प्रार्थना करता हो, क्योंकि भगवान के कान हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान देखते हैं, भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, लेन देन क्या बोलते हैं उसको, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन हमारी चेतना के हिसाब से, हमारे भाव के हिसाब से करते हैं। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथैव वचामि हम। आज जब करते हुए मैं सुबह सोच रहा था कि क्या सच में मैं जब करते हुए चाहता हूं कि मुझे कृष्ण का संग प्राप्त हो, या हम कर पाते हैं इस प्रकार कि हम जब करने का उद्देश्य मान पाते हैं कि हम सच में फॉर्मेलिटी के लिए बस माला पूरी कर रहे हैं। नुकसान नहीं है उसका, जब का फायदा होता है, बट कहने का मतलब है कि कितना अजीब है कि आपको, आप किसी से बात कर रहे हो, उसको अपनी बात सुना रहे हो, वो इधर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है और बताओ आनंद, कुछ ना कुछ फोन पे बात करना है ना, इम्पर्सनल सा लगता है ना। तो उसी तरह जब करते हुए हमें देखना चाहिए कि हमारा चेतना क्या चल रही है। जो 2 घंटे का जप है हमारा, उस जप में समय हमारी चेतना क्या है वो हमें मिलता है। तो इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारी एडवांसमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए। अब दीक्षा भी ले ली, दास नाम भी लग गया, मंदिर भी आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी मिल गया, ठीक है ना, लेकिन वो आगे तो नहीं बढ़ रहे प्रभु जी। तो वो हमें उस समय मालूम पड़ता है जब हम जप करते हैं, कितना सुन पा रहे हैं जप को, हर मंत्र कान में जा रहा है, सुन पा रहे हैं, दो लोग चार चार माला नहीं कर रहे मेरे पता चल रही हो, ध्यान तो मंत्र पे लगाना था, कहाँ ध्यान, प्लानिंग्स पे चलता रहता है। माला करते हुए बात है, क्योंकि हमारा जो टीवी है ना, मतलब जो हमारा स्कैनर हमेशा खुला रहता है, आंखें हमारी हमेशा खुली रहती हैं, देखती रहती स्कैन करती रहती है, यहां से थॉट उठा लिए, यहां से विचार उठा लिए, उसने ये कर दिया, उसने ये करा, उसने ये कपड़े पहने, उसने कल यहां ये कर दिया, पूरा दिन देखते इतना कुछ इकट्ठा करते हैं हम। तो फिर जब आंखें बंद करते हैं, क्योंकि जब आंखें देख रही हैं तो मन उसके साथ साथ है कि नहीं, आंखों को थोड़ी मालूम पड़ता है कलर क्या है, आंखों के अंदर कुछ नहीं है, ये तो पीछे मन है जिसके अंदर ये ज्ञान है, पीछे बुद्धि है जो ये ऑब्जर्व करती है, समझ पा रहे हैं? ये तो पत्थर है, ये मिट्टी का है, तो इसके अंदर क्या फीलिंग है, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गई या कोई मशीन है, उसके अंदर उसमें आप टेप करके भेज दिया, उसमें बोल दिया, एक मशीन ने दूसरे मशीन को बोला आई लव यू, भर दिया उसमें टेप, प्यार थोड़ी कर सकती हो, फीलिंग नहीं है उसके अंदर। उसी तरह जब आंखें खुली हुई हैं तो मन उसके साथ है, वो हर समय एंटरटेन कर रहा है, स्कैन कर रहा है और मनोरंजन कर रहा है। क्यों नहीं हम लोग भीड़ में लोग बैठे हैं, क्यों नहीं हम लोग सबको देखना पसंद करते, केवल एक अच्छे से चेहरे को देखकर हमारी आंखें रुकती हैं, कहीं चल रहे हो, कोई फिल्म चल रही है, कोई कुछ भी है, लेकिन रुकेंगे कहां पर, जहां पर मन को मनोरंजन मिलता है। दुकान में बहुत सारी मिठाइयां हैं, लेकिन मन में जो टेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए है वहीं रुककर उसी को स्वाद आस्वादन करना चाहिए। कान सुबह से लेकर शाम तक पौ पौ टें टें हॉर्न सुन रहा, बच्चे की गड़गड़ाहट सुन रहा, लेकिन अचानक जब कोई सुरीली आवाज या कोई स्त्री किसी पुरुष की आवाज सुनती है तो अचानक कान उठते हैं, खुलते हैं, ये कुछ मेरे बारे में बोल रहा, समझ पा रहे मत। तो मनोरंजन की, मन को रंजन देने वाली चेतना जो है ये हमारा नुकसान करती है। तो इसलिए जब जब हमारी इंद्रियां खुली हुई हैं तो मन उसके साथ साथ ही आनंद ले रहा है, और जब हम लोग आंखों को बंद करते हैं कि चलो जब करते हैं, तो आपने अभी आंखें बंद कर दी, अभी मन बेचारा कहां जाएगा, इसको तो अंधेरे के लगता है, कुछ दिख ही नहीं रहा, अब क्या देखेगा ये? तो इसने जो देखा हुआ है वो सोचेगा, या जो अभी देखना है प्लानिंग्स वो करेगा। तो इस प्रकार की चेतना से हमारा जो चैंटिंग चल रहा है, इस प्रकार की चेतना, तो हमें क्या करना चाहिए ना, सोल्यूशन जैसे हम बताते हैं कई बार कि हमारे प्रयास कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स होने चाहिए, करने चाहिए। जप का स्थान बनाना चाहिए, तुलसी के सामने जप करना चाहिए, और उसके पास कुछ स्लोगन्स लिख के रखने चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में, कि हरे कृष्ण पूरा मंत्र दे सकते हैं, उसको बोलते हुए देखते पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि कृपया करके भविष्य की और भूतकाल की बातों को छोड़े, हरि नाम पर ध्यान लगाए, कुछ भी। इस प्रकार शब्दों को ध्यान से सुने, भगवान के चित्र को रख सकते हैं, चरणों से लेकर ऊपर तक दर्शन कर सकते हैं, तो जितना ज्यादा हम लोग अपनी इन फाइव सेंसेस को कृष्ण की सेवा में एंगेज रखेंगे, मन उसके साथ उसको एंटरटेन करवाएंगे, तू स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट कर, क्योंकि गन से तो तूने जिंदगी भर भरा अपना मन, तो जाकर अच्छा कई बार क्या होता है, दो चार छह माला करने के बाद को यार आज तो बड़ा अच्छा चल रहा है, जैसे उसी टाइम मन ठा करके फिर भागेगा, ठीक है ना, आंखें बंद करो तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, खड़े हो जाओ, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना। सुनते सुनते क्या होगा कि हम लोग उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे हरिनाम का। अभी हमारी स्थिति क्या है कि मन भाग रहा है, जैसे मर्जी जब कर रहे हैं, चलते उठते खड़ते, गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के तो भी चैंटिंग हो रही है, ऐसे चैंटिंग कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं है। चेतना में हल्का हल्का इंप्रूवमेंट है, कुछ नियम फॉलो करने लगे हैं, कुछ है हल्का फुल्का, लेकिन इसका ठीक प्रकार से करने पे कितना बेनिफिट हो सकता है, और समय भी बड़ा कम है हमारे पास। और फिर जो हमने बताया, जो मैं बात कर रहा था कि इतनी मुश्किल से भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ, उसको भी उसके लिए प्रति हम सावधानियां नहीं बरतते। अगर हम तीन चार चीजों पर अच्छे ढंग से फोकस कर लें तो हम लोग काफी अच्छे एडवांसमेंट कर सकते हैं। एक कि जो भक्त कई बारी निंदा करते हैं किसी भी टॉपिक पर, कोई बात छेड़ते, टॉप कोई लेना देना नहीं है, कोई उनके ना अथॉरिटी है ना कुछ है, तो फिर भी वो किसी ने उनको चाहिए फूड चाहिए खाने के लिए, है ना, तो वो कुछ ना कुछ निंदा करना चाहते मान लीजिए, तो ऐसे भक्तों का संग ना करें। तो ये बड़ा छोटी सी बात है, क्योंकि बता रहे निरअपराध नाम ले पाए कृष्ण प्रेम था, कि अगर हमने निरअपराध नाम जप लिया तो कृष्ण प्रेम धन गारंटेड है। और जैसे उस दिन लेक्चर में बात कर रहे थे कि कई बारी भक्तों के प्रति जब अपराध करते हैं तो भक्त, खैर अभी तो हम लोग सब साधक ही हैं, तो कई बार कोई सुनता ना इसने मेरे बारे में ये कहा तो वो भी कुछ बोलता था, हाँ तो ऊपर से दोनों तरफ से तीर चलते हैं, तो आपस में दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, जैसे वो यदुवंशियों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। लेकिन अगर कोई सच में अच्छा भक्त है तो वो अपने बारे में कुछ सुनने के बाद भी वो क्या चाहेगा कि नहीं नहीं मुझे इसका भगवान इसका भला करना, ठीक है ना, जैसे कोई शराबी मिल जाए कोई टकर जाए उल्टा सीधा बोल रहा है आपको भी है, क्या ऐसे मुंह लगूं मैं, ठीक है ना। उसी तरह जब भक्त लोग होते हैं, जब वो देखते हैं उनके प्रति कुछ निंदा हो रही है, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये उन पर झूठे इल्जाम लगा जा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि भगवान अभी ये सही चेतना में नहीं है, इनके से कुछ बुरा ना करें, इनका वो करें। हरिदास ठाकुर जी को हंटर मारे जा रहे थे, कहा जा रहा था कि भगवान के नामों को लेना बंद करो तुम, लेकिन वो केवल एक बात कर रहे थे, भगवान अंधे थोड़ी हैं, भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जब गजराज की जान बचानी थी तो गरुड़ से कूद गए भगवान की, तो बड़ा लेट चल रहा है, और उसको मारकर वापस आ गए मगर को, तो कहते अरे तुम कहते मैं उसको कराया काम चलो वापस। भगवान से रुका नहीं चाहता अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं ना इनकी चेतना का स्तर इतना अच्छा होता है कि ये नहीं चाहते कि ये जो बेचारा अपनी कंडीशनिंग के कारण, अपने अनर्थों के कारण, अपनी गंदी आदतों के कारण जो ये निंदा अपराध कर रहा है, इसको नहीं पता ये तो अपनी भक्ति का नुकसान कर रहा है नंबर एक, और कृष्ण इसको छोड़ेंगे नहीं, कारण क्योंकि भक्त फिर भी जैसे हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवान इन सबको माफ कर दो क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो। क्राइस्ट को जब टांगा तो वो भी यही बात कह रहे थे कि हे भगवान इनको क्षमा कर देना, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर को हंटर मारने के बाद भी वो प्रार्थना करते रहे। चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रकाश लीला दिखाई, जब हरिदास ठाकुर को बुलाया तो हरिदास ठाकुर को बताया उन्होंने कि तुम मेरे को बहुत प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तृणादपि सुनी चेन वाली क्वालिटीज है, क्योंकि उस दिन तुम्हें मारते हुए भी तुम केवल यही बोल रहे थे कि मुझे क्षमा कर देना भगवान, वरना मैं सुदर्शन लेके साथ में खड़ा हुआ था, मैंने सुदर्शन छोड़ दिया था उनकी गर्दनों को काटने के लिए, लेकिन तुम हाई नहीं कर रहे थे, एक बार तो बोलते कि भगवान बस इनको जरा देखो क्या कर रहे हैं, वो रोकते थोड़ी हो मार कर। इसलिए मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने क्या किया तुम्हारे ऊपर मैं आ गया, अपनी पीठ को अपनी कमर को मैंने तुम्हारे आगे कर दिया, सारे हंटर मैंने अपनी कमर पे खाए। देखना चाहते हो, अपना उतरी उतारा और सारे हंटर के निशान चैतन्य महाप्रभु की कमर पर थे। हरिदास ठाकुर गिर गए, ओह क्या कर दिया। जब भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो भक्त तो फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन बताते हैं कि उनके जो चरणों की रज है ना वो माफ नहीं करती, वो भगवान से नहीं सहा जाता। इसलिए भगवान कहते हैं मोर स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, मेरे प्रति अगर सेवा अपराध करते हो तो मैं माफ कर दूंगा अगर तुम मेरा नाम लेते रहोगे तो, लेकिन तुम्हारे स्थाने अर्थात वैष्णव के प्रति अगर तुम अपराध करते हो तो ना ही परित्राण, कोई उद्धार कर ही नहीं सकता। इसलिए जब गोपाल चपल ने श्रीवास आंगन के बाहर, श्रीवास ठाकुर जी के घर के बाहर उनको बदनाम करने के लिए देवी पूजा का सामान रख दिया उनके घर के बाहर, कल देखता हूं बड़ा अपने आप को कृष्ण भक्त बनता है। सुबह होते जैसे श्रीवास ठाकुर जी ने देखा, अरे उन्होंने अपने भी लोगों को इकट्ठा कर दिया, अरे आओ इधर आओ आप भी इधर आओ, देखो 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 लोग मुझे कृष्ण भक्त बोलते हैं, मैं नहीं हूं, ये देखो क्या है मेरे घर, अरे मैं तो डुप्लीशियस भक्त हूं, मैं तो ये भी करता हूं वो भी करता हूं। तो जो गोपाल चपल था इस अपराध की वजह से लोगों को मालूम था कि ये कर ही नहीं सकते श्रीवास ठाकुर जी काम, तो इस प्रकार 3 दिन के बाद ही गोपाल चपल को कोढ़ हो गया, हाथ गलने लगे, पस पड़ गई, नाक बह गई, इतना दर्द होता था उनको, वो परेशान हो गए। चैतन्य महाप्रभु से काफी माफी मांगी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं, तुम्हारे जैसे अपराधी को तो मैं कर ही नहीं सकता, तड़पो जन्मो जन्म तक तड़पोगे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। फिर कुछ समय के बाद मिले चैतन्य महाप्रभु, तो देखा उसकी हालत अभी भी सड़ रही है, अभी भी तप रहा है। तो महाप्रभु ने कहा जाओ श्रीवास ठाकुर से जाके माफी मांगो। वो गए श्रीवास ठाकुर से माफी मांगने अपनी गलती की, तब जाकर उनका कोर्ट ठीक हुआ। हम यहां डराना नहीं चाहते किसी को, बट उद्देश्य जो है हमारे जीवन का वो हमें मालूम होना चाहिए, कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। डूज में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का 1 घंटा नियमित रूप से अध्ययन करने का प्रयास करना, भक्तों का निंदा शून्य भक्तों का संग करना, और जो सेवाएं दी जाती है उन्हें निस्वार्थ भाव से करना। डोंट्स में चाहे हमारे कितने अच्छा मित्र क्यों ना हो, उससे हमारी कितनी अच्छी बनती क्यों ना हो, एक ही प्लेट में क्यों ना खाते हो या खाया हो, चाहे लंगोटिया यार क्यों ना हो, अगर दोनों भक्ति में आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो निंदा कर रहा है तो पहली 2-3 मीटिंग में आपको हो सकता मना भी ना करवा, हो सकता आपसे सीनियर हो गई, लेकिन कोई ना कोई तर्क देकर श्लोक पढ़कर मैनेजमेंट का कोई इश्यू बनाकर वो निंदा कर ही दे, आप फंस जाओगे। तो पहली 2-3 मीटिंग में ही अगर हम लोग स्टिक हो जाएं तो उसके बाद व्यक्ति को पता चल जाता है और हृदय से वो आपको आदर करना शुरू कर देगा। पहले ही जब आपको लगे, कहना कह सकते हैं अगर जो बचना चाहता है कि प्रभु जी उसमें मुझे लग रहा है शायद ये निंदा का एक पार्ट है, नहीं नहीं निंदा है, अरे गलत तो गलत नहीं बोलेंगे तो क्या है ना, उसने ये कर दिया ऐसे हो गए ये नहीं कर सकते, नहीं फिर भी निंदा है, तो ये अपने आप में उसको लगेगा यार मेरा दोस्त था मैंने इसको भक्ति में लगाया, ये ऐसे बोलेगा मेरे को, अब ये मुझे सिखा गया निंदा है। बट कोशिश करनी चाहिए अगर तो सुन ले तो अच्छा है, नहीं तो बिना बोले जा सकते हैं, उस स्थान को छोड़ सकते हैं, मुझे काम याद आ गया मुझे जाना है मैं रुक नहीं सकता, उसको पता चल जाएगा ये अचानक मैंने निंदा शुरू करी तो ये निकल गया, तो समझ जाएगा इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कि ये निंदा नहीं सुनना चाहता, इसका मतलब क्या है कि ये भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। तो इस प्रकार अवॉइड कर सकते हैं, या फिर उसको फिर बता सकते हैं, देखो आपके मन में कुछ भी है ना, तो आप जाके डायरेक्ट बात कर लो, आपने उससे सुना दिया, इसने कर दिया, आपने देख लिया, देख कर भी चीजें सही नहीं होती हैं। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा वो यही कर रहे थे, तो जाके पूछ लो ना। और वो कर रहे थे तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना, आप चर्चा कर कर क्या कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हैं, तो जितना उसका नुकसान नहीं हो रहा उससे ज्यादा आपका नुकसान हो रहा है। तो इसलिए चाहिए भक्तों को कि वो प्रयास करें इन सब चीजों से बचने का। जब हमारे सिंसियर एफर्ट्स होंगे इस प्रकार और पॉजिटिवली हम लोग भक्ति मंगेज होंगे, तब देखना जादू, जादू मतलब हमारी चेतना में परिवर्तन। जो हम गुण पढ़ते हैं ना भक्तों के 26 गुण, किस प्रकार वो गुण हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाएंगे। अभी क्या करना पड़ता है, हे भगवान मैं बड़ा क्रोधी हूं, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ये है, मेरे में वासना है, माफ कर दो छोड़ दो बचा दो, ऊपर 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 मन से बोलते हैं इस तरह। लेकिन जब व्यक्ति सही ढंग से प्रार्थना करता है और पॉजिटिवली एंगेज्ड है प्रॉपर भक्ति में, ठीक ढंग से साधुओं का संग कर रहा है, वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए, आपके पास है ना वैष्णव सदाचार का जो सेमिनार हुआ था, कम से कम उन 4 लेक्चर को महीने में सुन लेना चाहिए। जिसके पास नहीं है तो आपने शायद रिकॉर्ड किए प्रभु जी के पास होंगे, महीने में सुन लेना चाहिए। नहीं नहीं मैंने कोर्स किया हुआ है जी, जब दीक्षा हुई तब किया था, उस दिन किया था। वैष्णव सदाचार का पालन कोई कोर्स नहीं है, 1 दिन का 2 दिन का नहीं, ये जीवन की कला है, आभूषण है वैष्णव का। वैष्णव जो है पहचाने ही जाते हैं अपनी वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए, नहीं तो वैष्णवों में और अवैष्णवों में अंतर क्या है। अवैष्णव जो है फॉलो नहीं करता सब चीजों को, वैष्णव वैष्णव सदाचार का पालन करता है। तो ये भी डूज में है कि हमको महीने में कम से कम सुन लेना चाहिए 4 लेक्चर्स को, फिर देखना चाहिए इस महीने मैंने कितनी गलतियां करी इससे, तो मैं अब ठीक करूं, नहीं तो नुकसान कर रहे हैं ना हम लोग। आप फैक्ट्री चला रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस जगह पर नुकसान है, यहाँ स्क्रैप में नुकसान है, चूहे ज्यादा घुस गए हैं, यहाँ पर लाइट जाने की वजह से 2 घंटे लेबर खाली बैठती है, आप देखोगे ना इन सब चीजों को, आप देखोगे बाद में माय गॉड कितना नुकसान होता है मेरा इन सब चीजों से। आप बड़ी बड़ी चूहेदानियां रखोगे, आप सफाई ज्यादा करवाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर लगवाओगे, आप जो लेबर खाली बैठती है उसको ठीक करोगे, हर चीज करोगे ना ठीक करने के लिए। तो जब हम लोग धन के लिए इतना डूज और डोंट्स पूरे चरण से करते हुए करते हैं, तो भक्ति तो हर चीज से सबसे ऊंची है। तो भक्ति को एक साइड बिजनेस या साइड एंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं लेना चाहिए, ये हमारी नेचर है जो हम भूल चुके हैं, उसको फिर से रिवाइव करना है। और वैष्णव सदाचार का पालन करते हुए हम लोग जो डूज बताएंगे उसको करेंगे तो निश्चित रूप से हम फायदा होगा। और जो हम बात कर रहे थे कि गलती हो गई अगर फिर से छूट गया, क्योंकि भक्ति के लिए ऐसा नहीं कि जैसे हमने बताया था कि खटवान महाराज और कई लोग हुए ऐसे जिनको कुछ समय रह गया था इनके पास, तो उन्होंने भगवान का स्मरण करके भगवान की भक्ति कर परीक्षित महाराज 7 दिन का समय था, तो इन्होंने सिद्धि प्राप्त की। उसी तरह अगर हमारे पास भी कई कई जन्म हम लगा चुके हैं नो प्रॉब्लम, बट अगर अभी भी समय है तो भक्ति को अच्छा करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, संबंध ज्ञान होने के बाद जो अभिधेय है वो ये अभिधेय है कि संबंध ज्ञान मालूम पड़ गया, अब अभिधेय क्या है, अभिधेय है कि मुझे डूज करने हैं डोंट्स नहीं करने, जो भक्ति की फेवरेबल चीज है उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्टिविटीज में, अपने आप को इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप में अंगेज रखना चाहिए जिससे कि क्या हो कि हमारे मन को फालतू के काम सोचने की और करने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे गृहिणियां हैं उन्हें चाहिए कि अपने आप को इतना अंगेज रखे घर में, इसलिए ड्यूटीज होने चाहिए, इसलिए मंदिर होना चाहिए, रोज सफाई करें घर में, इतना क्लीनलीनेस रखें फायदा रहे, घर में 2-3 बार सफाई करें, ठीक है ना, कृष्ण की कथा चलते रहे, लेक्चर चलते रहे, कीर्तन चलते रहे, ठीक है। तो इस प्रकार सेवाओं में गिर, हम आपको अपने फायदे के लिए करना है ना, मंदिर में जैसे भोग व्यवस्था होती है तो भोग बनाते हैं, कई लोग लेकर आते हैं, तो करना चाहिए। इसी तरह प्रभु जी लोग अपने बिजनेस में अगर मान लो एंगेज हैं भी, बट नो प्रॉब्लम, चैंटिंग बॉक्स चलता रहे, जैसे थोड़ा फ्री हुए तो रीडिंग कर ली, मान लो एक घंटा पढ़ना तो जब भी टाइम मिले तो निकालना है, दो राउंड फालतू, चार राउंड फालतू, आठ फालतू, धीरे धीरे बढ़ाना है राउंड को, इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहे। प्रभुपाद जी कहते थे जो ये किसान लोग कर रहे हैं इनके पास खेती होनी चाहिए थी अपनी, बैल रखने चाहिए, करना चाहिए। तो किसने कहा जी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या दिक्कत है ट्रैक्टर रखने, कहते नहीं ट्रैक्टर क्यों रखोगे, ट्रैक्टर रखोगे तो क्या करेगा किसान, वो जल्दी से खेती पे ट्रैक्टर चलाकर बैठ जाएगा खाली, अब खाली बैठ के क्या करेगा, शैतान जाग जाएगा, तो खाली समय पर उल्टा सीधा काम कुछ करेगा, शहर में आने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टियां बेचेगा, है ना, उल्टे सीधे काम करेगा। तो प्रभुपाद जी नो, लेट देम एंगेज इन फार्म्स, लगता है चार चार छः छः आठ आठ दिन खेती करें, शरीर लगना चाहिए, नहीं तो खाली बैठ रहे तो काम गड़बड़ करेगा। इसी तरह जो बाहर सेवा करते हैं बिजनेस में ऑफिस में जाकर, नो प्रॉब्लम करो काम, बट उसका जो फल है फिर उसको अर्पित करना चाहिए और काम के समय में भक्ति करते रहना चाहिए, अर्थात चैंटिंग रीडिंग भक्तों से बात, जो भक्त आपको लगता है कि सीरियस होने का प्रयास कर रहता हो उसको दोस्त बनाना चाहिए कि प्रभु जी आप क्या पढ़ रहे हो आजकल, क्या इसका मतलब क्या है। माता जी इसको भी चाहिए एक दूसरे फोन करके पूछे आपने क्या पढ़ा, उस लेक्चर में क्या समझ आया। तो इस प्रकार ये दोस्ती करें, मच्छित मदगत प्राण, पहले इस तरह एक दूसरे की हेल्प करें, ये सच्ची दोस्ती। वो नहीं कि उसका रजोगुण और मेरा रजोगुण भी मिलता है, उसका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक ही है इसलिए हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी दोनों के दोनों भी नुकसान करेंगे अपना। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे तो प्रयोजन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का धाम, चाहे मांगे चाहे ना मांगे कृष्ण दे देंगे। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है, तो हम लोग भक्ति में कुछ एडवांसमेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, जब व्यक्ति इस प्रकार सही चेतना से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो सुसुखम कर्तुम अवय, कि बड़े सुखपूर्वक करता है, आनंद की प्राप्ति होती है, संतुष्टि फील करता है, और एडवांसमेंट के साथ उसको लगता है कि यस आई एम एडवांसिंग। दूसरा कि जो चैंटिंग के समय हमारी डिजायर्स रहती हैं या भक्ति करते हुए या जो हमने पहले सोचा था, धीरे धीरे उसके भी अटैक होंगे कि अब ले लो जी, अब अरे आज मैं सोच रहा हूं कि मैं आज से ये नियम फॉलो करूंगा जो मैं कई दिन से चल रहा था, अब पूरा हो गया ये, अब क्या करूं। तो कई बार इस तरह की इच्छाएं जो पहले की थी, जो हम चाहते थे वो पूरी होने की कोशिश करें। तो अगर तो शेकिंग है या अस्थिर रूप में रहते हैं तो इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, फिर नियम बनाने की कोशिश करें तब तक दो चार छः साल और निकल चुके होंगे, बड़ा मुश्किल होता है इस प्रकार। तो इसलिए भक्तों के संग में रहकर, निर्देशन में रहकर भक्ति करने का प्रयास करें, हृदय को खोलने का प्रयास करें। हृदय खोलने से क्या होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ कोई है जिसको मैं अपनी बातें बता सकता, और जब व्यक्ति हृदय खोलता है तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है उसको, एक ऑनेस्टी नाम का जो शब्द होता है, ईमानदारी, एक सरलता का, वो भगवान बड़ा लाइक करते हैं। इसलिए भक्ति के एडवांसमेंट में जो रूप गोस्वामी जी ने छह क्वालिटीज बताई हैं जो करनी चाहिए, क्या है वो, रूप उसमें नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में नहीं, इसके बाद है ना, उसमें कहते हैं कि षट प्रति लक्षणाम जो बोला गया कि उसमें कहें कि गुह्यम आख्याति प्रेक्षति, अर्थात भक्तों के बीच में, सबके बीच में नहीं, जिनके प्रति संबंध है जिनसे उनके प्रति, नहीं तो कई बार क्या होता है न्यू फैट स्टेज में आपने किसी के आगे अपने हृदय को खोल दिया, उसने किसी को बता दिया, ढोल पीट दिया, तो वो उसका बड़ा शेक फिर, तो प्रॉपर उस तरह चले, तो फिर भोंस दे अर्थात कि एक दूसरे को प्रसाद के लिए बुलाना, प्रसाद देना, एक दूसरे को उपहार देना, उपहार स्वीकार करना। उपहार का मतलब ये ना हो जाए कल को कि प्रभु जी उसने मुझे ये दिया था, मुझे कितने का देना चाहिए, फिर हम इतने का दें, वो कितने का दें, वो बंदा परेशान है, क्या उपहार शुरू कर दिया। तो बड़े उस सेंस में होना चाहिए इसका मतलब, कि जिससे कि ये प्रीति लक्षण जब होंगे भक्तों के बीच में तो बहुत जल्दी कम्युनिटी हमारी जो है आगे बढ़ेगी। और आने वाले समय में अगर हमारे ये बैच जो है और दीक्षित भक्त भी जो जुड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो एक अच्छे समाज को, जो आने वाला जुड़ने वाला समाज है, उसको एक अच्छा विजन दे पाएंगे, एक ऐसा कल्चर दे पाएंगे जिसमें कि वो लोग भक्ति कर सकें। अगर समाज अर्थात मंदिर में या भक्तों के संग में ईर्ष्या, द्वेष और एक दूसरे के प्रति अपराध और सफोकेटिंग टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर है, दम घुटता हो जिसका, बचना चाहता, भागना चाहता व्यक्ति, अंदर ही नहीं आना चाहता, अगर ऐसी स्थिति है तो जितने और भी आएंगे उनके ऊपर भी वही स्टैम्प लगेगी, डाई गंदी बन गई आपकी डाई, जो पहला पीस बनाएगा डाई वो सारे पीस ऐसी बनाएगा। तो अगर पहला बैच या दूसरा बैच हमारा जो स्ट्रांग ना हो, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज ना हो, तो जितने और स्टैम्प बनेंगे ठाँ ठाँ सब ऐसे बनेंगे। तो इसलिए पहले बैच की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, उसके आपस में बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों को आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग बड़ा नुकसान करेंगे, नहीं तो पनिशमेंट बहुत है, हमने खुद ढंग से भक्ति का सही आचरण नहीं किया और सो कॉल्ड सीनियर है, दास दूस लगा हुआ पीछे और उसके ही हुक्म चला नहीं, मैं दास हूँ, तुम मालूम है कब से आ रहा हूँ, तुम ये हो के ये करो वो करो, तो होगा क्या, हमारे आचरण को देखकर गिरने वाले भक्त या पीछे भक्ति से पीछे हटने वाले भक्त के रिएक्शन भी हमें लगेंगे, नहीं समझे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिसके भी हृदय में संशय आ जाता है तो उसको विनाश हो जाता है। तो हम लोग कई बार संशय पैदा करने वाले वो बन जाते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, ये कैसा भक्त है, क्या भक्ति ऐसी होती है क्या। तो हमारे आचरण में वैष्णवता छलकनी चाहिए, हृदय में भी वैष्णवता होनी चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करें, हस्ती रखें और हृदय को खोलें, क्योंकि सबको मालूम है सब कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं, कहीं ना कहीं पाप होते हैं, तो प्रयास करें तो ठीक ढंग से उनको रोकें और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तरीके पूछें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की किसी भी प्रश्न है तो अलग से आगे पूछ लें, कई लोगों को जाना होगा जल्दी, लेट हो गया।
प्रयोजन को थोड़ा सा बाइक,
प्रयोजन का मतलब है कि जो हमें हमारा उद्देश्य है, जो प्राप्त करना है, मंजिल हमारी, वो प्रयोजन है। प्रयोजन गौड़िया वैष्णवों का ज़्यादातर प्रयोजन रहता है कि वो वापस आध्यात्मिक जगत में जाकर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के संघ को प्राप्त करके उनकी सेवा में फिर से निवेश हो। अच्छा है ना प्रभु जी,
हर क्लास पे मतलब हम लोग खुद ही अटेंडेंस कर रहे हैं और रजिस्टर मतलब यहां अवेलेबल हो।
अब मैं करता
हूं अटेंडेंस,
ठीक है। और दूसरा मैं चाह रहा था कि हमारे कई और वैष्णव भी ऐसे हैं जो पुराने दीक्षित हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर वो भी आना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। तो अगर किसी के टच में है कुछ लोग, तो उनको रिक्वेस्ट करके बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा समाज ठीक होना चाहिए। देखिए होगा क्या ना, कि कुछ लोग अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके साथ के या उनसे और सीनियर नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे, तो हमेशा कलह बने रहेगा। सबका उद्देश्य एक होना चाहिए, फैमिली हु प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। जब परिवार में सब लोगों का उद्देश्य एक होता है, सब इकट्ठे भक्ति करते हैं, तो वही हमेशा साथ रहकर भगवान प्रसन्न कर सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गणताय जी की जय।